ज्ञान नमो ताहि जाति भये अर्हन्तादिम जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है तैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। सबके मन में अपने जीवन को अच्छा बनाने की भावना भी होती है, लेकिन सबका अपना कॉन्सेप्ट अलग अलग है। दो तरह के आंदोलन इस देश में हैं, अपने जीवन को विकसित करने और अच्छा बनाने के। मैं ये बात एक प्रश्न के उत्तर में दे रहा हूं, और वो प्रश्न ये है कि जीवन में सब कुछ अचीव कर लेने के बाद भी एक रिक्तता क्यों महसूस होती है। बहुत बड़ी उपलब्धियां भी जिन क्षणों में बेमानी लगने लगती हैं, जिन क्षणों में अपना किया भी व्यर्थ जान पड़ता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने पर एक आदमी अपने मन को कैसे कंसंट्रेट करे और कैसे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। और दूसरा प्रश्न भी इसी में, उत्तर इसी में समाहित है दूसरे प्रश्न का भी, कि जहां एक ओर इतना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है और दूसरी ओर इतनी भव्यता से और धार्मिक अनुष्ठान होने लगे हैं, धर्मात्माओं की मंदिर में भीड़ अपेक्षाकृत अधिक हो गई है, इसके बावजूद भी आखिर उस मन की शांति और निर्मलता का क्या हुआ, वो कहां गायब हो गए। ये प्रश्न है और सामयिक है, सबके सामने है, बच्चों के, युवाओं के, बूढ़ों के, यहां तक कि शावक और साधु के भी, सबके सामने है। इसका समाधान कौन देगा? क्या कोई समाधान है? हम ढूंढें, देखें हम कि दो तरह का आंदोलन अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सारे देश में है। एक है तकनीकी का आंदोलन, जहां कॉर्टेक्स से लेकर के चलना शुरू किया था जब रोड नहीं बने थे, और कॉर्टेक्स से बढ़ते बढ़ते और आज जेट तक हम आ गए हैं, जहां हाथ की चक्की से लेकर के आज रिमोट से सारी चीज हम कंट्रोल करने के ज्ञान को विकसित कर चुके हैं। आखिर इतना विकसित हमारा अपना ज्ञान, हमारा अपना सोच, हमारे जीवन को निर्मल और शांत क्यों नहीं बना पा रहा है? कॉर्पोरेट में चलने वाला भी उतना ही झगड़ालू, उतना ही लोभी, उतना ही मायाचारी, उतना ही अहंकारी था जितना कि आज जेट में बैठ करके अपनी यात्राओं को आसान बनाने वाला, जितना पहले एक अंगूठा लगाने वाला जिसे कि अपने हस्ताक्षर करना भी नहीं आता था, वो जितना झगड़ालू ईर्ष्यालू अहंकारी और लोभी आज बात ऊंची शिक्षा पालने के बाद भी ये सारी चीजें उसके भीतर भी ज्यों की त्यों विद्यमान है। आखिर क्या हुआ? इन चीजों ने हमारे मन की मलिनता और अशांति को दूर क्यों नहीं किया? हमने तो सोचा यही था कि अगर हम इन चीजों का विकास कर लेंगे तो हमारे जीवन की विकृतियां, हमारे जीवन की मलिनताएं हट जाएंगी, हमारा जीवन निर्मल होगा, आसान होगा, हम बहुत स्मूथली अपनी लाइफ को और मूव कर पाएंगे। लेकिन इसके मायने हैं कि कहीं कुछ मिस कर रहे हैं हम। टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी कहीं कुछ मिसिंग है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं भव्य पंडाल हैं, जगरमगर लाइटें हैं, बड़े बड़े आयोजन हैं और धर्म के बहुत बड़े से बड़े पंच कल्याणक और बहुत से बड़े आयोजन हैं जिनमें सैकड़ों हाथी आए हैं, जिनमें टेंट हाउस वाले ने और रावटियां लगाई हैं जिनमें लोग रुकेंगे और उनके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन इन तमाम व्यवस्था के बाद लौटने वाले से पूछा जाए क्या पाया, अरे साहब क्या व्यवस्था थी, मजा आ गया, रुकने की क्या व्यवस्था थी साहब, और खाने की मत पूछो साहब, इतना शुद्ध घी था कि नाक फटी जा रही थी, इतनी बढ़िया गंध थी। उसके अपने एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो उतने बड़े अनुष्ठान से क्या लेके जा रहा है, उतने बड़े अनुष्ठान से उसने ये नहीं लिया कि कितनी बढ़िया बात कही गई थी, मैंने कितनी भव्यता से भगवान के दर्शन किए, उनसे वितरागता का मैंने पाठ सीखा, और इतना ही नहीं जो वहां पर मुनिजन थे आचार्य भगवंत थे उन्होंने हमारे जीवन के कल्याण के लिए जो बात कही वो मैं पाथे की तरह अपने साथ बांध के ले जा रहा हूं, ये कोई नहीं कहता। इसके मायने हैं कि वे सारी चीजें भी हमारे जीवन को निर्मलता और शांति नहीं दे पा रही हैं, वहां भी कुछ हम मिस कर रहे हैं। दोनों अपनी जगह सही है लेकिन उसमें से जो गायब हो गया है अगर वो वहां उपस्थित हो जाए तो दोनों चीजें अपने आप में ठीक हो जाएंगी, दोनों आंदोलन अपने आप में सफल हो जाएंगे, दोनों आंदोलन अचीव करेंगे अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन को, फुलफिलमेंट को, इनर फुलफिलमेंट को, पीस को। क्या चीज मिस हो रही आप सोच सकते हैं? एक ही चीज, जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है ये गड़बड़ा गया है। उद्देश्य होना चाहिए था हमारी भावनाओं की निर्मलता। हर क्रिया के पीछे यदि भावना की निर्मलता हो तो वो क्रिया हमारे जीवन को बहुत संतोष देती है, शांति देती है और निर्मलता देती है। वो भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। भावनाएं मोहर की तरह हैं, कागज के टुकड़े की कोई कीमत नहीं होती लेकिन उस पर जब मोहर लग जाए और लिख दिया जाए कि 100 रुपए आप कहीं भी ले जाइएगा वो कागज का टुकड़ा भी आपको 100 रुपए दिलवा सकेगा। वैसे आप एक कागज का टुकड़ा ले जाएं उसका कोई महत्व तो नहीं है। हमारे अपने जीवन में हम देख रहे हैं हमारा बौद्धिक विकास हो रहा है, ठीक है, IQ तो अच्छा होना ही चाहिए। कल जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात आई थी तब अपन ने यह समझा था हमारा बौद्धिक विकास, हमारी बौद्धिक क्षमताएं बढ़नी चाहिए और उनका हमें जरूर लाभ लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारा भावनात्मक विकास और हमारा आत्मिक विकास भी होना चाहिए, इस पर हमने अभी तक विचार नहीं किया। IQ के साथ कोई EQ और SQ नाम की चीज भी होनी चाहिए? नहीं, इंटेलिजेंसी इमोशनल इंटेलिजेंसी भी हो सकती है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी भी हो सकती है। सिर्फ इंटेलिजेंसी के मायने ये नहीं है कि हम कुछ थोड़ा सा ज्ञान हासिल कर लें और वो ज्ञान हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म ना कर पाए, हमारे जीवन को उससे कोई लाभ ना मिल पाए, सिर्फ उससे हम परीक्षा पास कर ले। ऐसा वाला ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है जिससे कि परीक्षा पास हो जाती है, और अपन सब परीक्षा पास करके तो यहां आए हैं। उसके साथ हमने वहां पर जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है उसके साथ कुछ और भी हमें जोड़ लेना चाहिए, उसके लिए यहां हम आए हैं। वो तो है ही हमारे पास डिग्री प्लस, वो प्लस क्या होना चाहिए वो हमारे दिमाग में रहे। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी प्रगति का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जिसका जैसा कॉन्सेप्ट होगा, जिसका जैसा सोच होगा, वैसे ही अपने उस लक्ष्य को निर्धारित करेगा। यदि सिर्फ भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठी कर लेना हमारे जीवन का उद्देश्य है तो मानिए हम बहुत असफल होंगे। हम भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठी करने में सफलता हासिल कर सकते हैं लेकिन जीवन के सुख और शांति को हासिल कर पाएंगे इसमें हमें संदेह है। हमने लोगों को वो सब सुख सुविधाएं और भौतिक संसाधन इकट्ठे करके दुखी देखा है। इसलिए ऐसा होता कि एकाध व्यक्ति दुखी है, नहीं, अगर सच्ची में पूछा जाए, बाहर से हंसते हुए चेहरे के भीतर झांक के देखा जाए तो शायद कोई उस बाहर से मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपी हुई पीड़ा को समझ पाएगा। हमें वो वाली आंख अपने भीतर यहां इसलिए आ के बैठे हैं कि वो एक आंख भी हमारे भीतर प्राप्त हो जाए जिससे कि हम इन सारे अचीवमेंट्स के बावजूद भी किस चीज को मिस कर रहे हैं वो हमारे पास हो। हमारी प्रतिभा किसी एक क्षेत्र में अगर है तो क्या उसे दूसरे क्षेत्र में भी उतना ही वैसा ही नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हमने अगर शिक्षा के क्षेत्र में योग्यता अपनी बढ़ाई है तो हम देखें कि उस शिक्षा से हम अपने परिवेश को, यहां तक कि हम अपने आंतरिक जीवन को किस तरह से मैनेज करते हैं। वो प्रतिभा हमारे आसपास के वातावरण को कितना सुगंधित और समृद्ध कर पाती है और इतना ही नहीं अपने जीवन को भी कितना सुगंधित और समृद्ध कर पाती है। और वो सुगंध और समृद्धि किस बात की है? वो हमारी अपनी भावनाओं की है। जो जितना भावनाओं में रिच है वो वास्तव में रिच है, वो समृद्ध है, वो उतना ज्यादा सुंदर है। हम सोचते हैं कि चेहरे की सुंदरता शायद किसी कॉस्मेटिक के यूज करने से होगी, लेकिन कितना भी हम कॉस्मेटिक का अपने चेहरे पर सुंदर दिखने के लिए उपयोग कर लें, लेकिन अगर मन गुस्से से भरा हो तो चेहरा बदसूरत मालूम पड़ेगा। कितना भी सजाया गया क्यों ना हो, कॉस्मेटिक्स उसे सुंदर नहीं बना पाएंगे। और अगर चेहरे पर शांति है तो जरा देखिएगा उस चेहरे की सुंदरता, उस चेहरे की सौम्यता। और अगर मन में प्राणी मात्र के प्रति प्यार है और स्नेह है तो देखिएगा जरा उन आंखों की चमक, जिनको कि अभी अभी अंजन लगा करके सुंदर बनाने की कोशिश की थी जो इतनी सुंदर नहीं लग रही थी, और जैसे ही स्नेह और प्रेम की भावनाएं हमारे भीतर पैदा हुई हमारे आंखों की चमक, चेहरे की दमक दोनों बढ़ गई। क्या ये चीज हम अपने जीवन में शामिल करना पसंद नहीं करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कॉस्मेटिक कल जाकर के और बाहर फेंक आए, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। हमारे पास जो है उसमें हम क्या इजाफा कर सकते हैं, उसमें हम क्या प्लस कर सकते हैं, जो हमारी क्षमता है करने की, बस इतना ही। आपने कभी अपनी मां का चेहरा देखा जब वो आपसे प्यार करती है? उसके चेहरे की चमक देखी आपने? वो बिल्कुल कॉस्मेटिक नहीं लगाया हो लेकिन अगर वो आपके प्रति प्रेम से भरी हुई हो तब उसका चेहरे की दमक देखी। फिर हम कौन सी चेहरे की दमक देखना चाहते हैं कॉस्मेटिक लगा करके? क्यों नहीं हम उससे ये मैसेज ले लेते हैं कि चमक तो मेरे भीतर के भावों से आएगी, बाहर की चीजों से नहीं आएगी। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि बाहर से आई हुई चमक के लिए हमें दूसरे की चमक को नष्ट करना पड़ता है, और ये हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाली चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं वे कहीं ना कहीं दूसरे के जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली मैं इतने इंटेलेक्चुअल्स के सामने बस अपनी बात को इनडायरेक्टली ही कह रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं कहना है। आप समझदार हैं, हम कदम कदम पर अपने जीवन को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए अगर दूसरे के चेहरे को कुरूप बना रहे हैं तो इसमें हमारी कोई प्रतिभा नहीं है, इसमें हमारा कोई गौरव नहीं है। हम देखें कि अपने जीवन को सुंदर बनाने के साथ साथ हमने अपने आसपास के परिवेश को कितना सुगंधित और सुंदर बनाया है, तब वास्तव में वो हमारी सुंदरता हमेशा कायम रहेगी। आपने कभी साहस और आशा से भरे हुए चेहरे की चमक देखी है? देखी होगी। आपने कभी किसी संतोष और अत्यंत जीवन में जो चीजें पाई हैं उनमें संतुष्ट व्यक्ति के चेहरे की चमक देखी है? तो क्यों फिर हम और किसी चीज को अपने जीवन में सुंदर बनाने के लिए शामिल करें जबकि अपने जीवन को सुंदर बनाने की चीजें मेरे अपने भीतर खुद हैं? हम यही तो चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाना। इसलिए तो हमने इतनी सारी कोशिशें की थी, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, इतना हाई एजुकेशन हमने लिया है, काहे के लिए लिया है और आगे भी लेंगे, लेना ही चाहिए। लेकिन हाई एजुकेशन लेने के बाद यदि हमारा जीवन सुंदर और दूसरे के लिए सुगंधित नहीं बनता है तो मानिएगा कि अभी कहीं हम कुछ मिस कर रहे हैं। बस इतना ही, हमने कुछ गलत कर लिया है ऐसा नहीं कह रहा हूं, हमने कुछ मिस कर दिया है, वो हमें उसमें ऐड करना चाहिए। तो इस तरह हमने ये समाधान खोज लिया। धार्मिक अनुष्ठानों में भी अगर भावनाओं की निर्मलता नहीं है तो वे धार्मिक अनुष्ठान हमारे जीवन को सुख और शांति नहीं दे पा रहे हैं, वास्तव में नहीं दे पा रहे हैं। आज जितना बाहरी प्रभावना और बाहरी चमक दिखाई पड़ रही है, काश उतनी ही भीतर भी चमक हमारे भीतर आ सकती। पूजा करके उठने वाला बाहर जाकर के किसी को कहना नहीं पड़ता कि ये पूजा करके आया है, व्यक्ति को दिखाई पड़ने लगता कि सचमुच इनके चेहरे की चमक बन गई है, बढ़ गई है, आंखों में एक विशेष प्रकार की रोशनी आई है, ये भी पूजा करके आए हैं, ये तो कितना प्यार से बोलते हैं। नहीं, लेकिन हो सकता है कि पूजा करके बाहर आते ही और हम दूसरे के बारे में और ठीक वैसे ही ईर्ष्या से भर जाएं जैसे कि पूजा करने से पहले थे, तो बताइएगा उस पूजा के अनुष्ठान ने हमारे जीवन को क्या दिया, हमारे जीवन में उसने क्या किया? क्या सिर्फ क्रिया के दोहराने से हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा? क्या कुछ थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का नॉलेज हासिल करने से हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा? नहीं होगा, दोनों चीजों से नहीं होता। न धार्मिक क्रियाएं दोहराने से होता है, न कि बहुत बड़ा संसार का ज्ञान प्राप्त कर लेने से होता है। जीवन तो परिवर्तित होता हमारी भावनाओं से। एक मेढक की पूजा के लिए ले जाई जा रही पांखुड़ी भी हमारी पूजा की थाली से बड़ी हो जाती है। क्यों बड़ी हो जाती है? सिर्फ इसलिए कि उसके पीछे भावनाओं की निर्मलता है, हार्दिकता है। टॉल्स्टॉय ने एक कहानी लिखी, वो मैं बाद में सुनाऊंगा, लेकिन इसके पहले हम एक प्रश्न और देख लें कि इन तमाम चीजों के बावजूद भी और हम अपने जीवन को किस तरह से आगे ले जाएं, कैसे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कंसंट्रेट करें। हमारा लक्ष्य, जैसे आज जो 10th में है उनका लक्ष्य है कि वो IIT को फेस करने जा रहे हैं आगे, या कि जो 12th में है वे भी इसी कोशिश में है कि वे PET, PMT या कि CA और CS इस तरह के किसी एग्जाम की तैयारी करें और इन तमाम विकृतियों और विषमताओं के बीच वे अपने रास्ते को बहुत आसान बना सकें। प्रश्न ये है, समाधान उसका चाहिए, हाउ टू कंसंट्रेट। कैसे हम कंसंट्रेट करें अपने आप को इन तमाम चीजों के बीच अपने लक्ष्य के लिए, ये सबके पास एक प्रश्न है। ये प्रश्न सबका है, कैसे हम इन तमाम धार्मिक अनुष्ठानों के बीच अपने आप को कंसंट्रेट करें अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उस वीतराखा को पाने के लिए। ये प्रश्न वहां भी लागू होगा, जब भी कोई पूजा करने भीतर घुसे और वीतराग भगवान के सामने पूजा करे और फिर वापस लौटे, तब वो खुद अपने भीतर होने वाले परिवर्तन को नापे कि मेरे भीतर इस पूजा के अनुष्ठान से क्या हुआ। मुनि जनों के चरणों में जाकर के बैठ के और फिर बाहर निकले तो फिर एक बार भीतर झांक के देखे कि मैं जैसा उस कमरे के भीतर घुसा था उससे बाहर निकलने पर मेरे अंदर कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं आए, कि मैं ज्यों कहते हूं तो फिर क्या मतलब हुआ ऐसे जाने से। जाना बंद कर दो ऐसा नहीं कह रहा हूं, पूजा बंद कर दो ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो जो मुझे अचीव करना था वो मैं मिस कर रहा हूं, ये तो दिमाग बना रहा है। ऐसा ना हो कि मैं लगातार 2500 वर्ष तक ये क्रियाएं दोहराता रहूं और अचीवमेंट के नाम पर मैं फिर जीरो रहूं, तो दूसरे को मैसेज क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं इन सब चीजों के बीच अपने को कैसे कंसंट्रेट करूं और उस लक्ष्य को पाकर के लौटूं, अगर मैं पढ़ने की टेबल पर बैठा हूं तब, और या कि मैं पूजा की थाली लेकर के और भगवान के सामने बैठा हूं तब, दोनों स्थितियों में मैं अपने को कैसे कंसंट्रेट करूं, इतनी सी ही चीज है। कंसंट्रेट तो हम कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन तुम्हारा होता ही है। आप क्या सोच रहे थे कि अलती पलती मार के आंख मीच करके और बैठ जाने का नाम कंसंट्रेशन है? ये मेडिटेशन इस तरह की होती है क्या चीज? तब तो फिर इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खुले हुए जिनपे सिर्फ मेडिटेशन और कंसंट्रेशन सिखाया जाता है। वहां से बाहर निकलने वालों को भी देख लीजिएगा वे कैसे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना, हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता, मैं क्यों कहूं कि वे कैसे हैं? आप देख लीजिएगा, अगर सेटिस्फेक्शन हो तो ओके, शुरू करिए, वही प्रक्रिया शुरू करिए। वरना 24 घंटे कोई अपने को अपने लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट कर सकता है वो विद्या सीख ले, इतना ही करना है। वो विद्या हमारे पास है, वो क्षमता हमारे पास है कि हम 24 घंटे अपने लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट हो सकते हैं। पढ़ना मेरा अगर काम है और पढ़कर के अपने जीवन को ऊंचा उठाना मेरा लक्ष्य है, तो फिर मेरी आंख उसी पर लगी हुई है। तब मैं ये नहीं देखूंगा कि इस पढ़ाई के दौरान मुझे अच्छे कपड़े पहनने मिले कि नहीं, अच्छा खाने मिला कि नहीं, मेरे माता पिता ने मुझे अपनी सुख सुविधाएं पूरी दी हैं या नहीं। मेरा तो लक्ष्य सिर्फ अपने उस जगह तक पहुंचने का है जो मैंने सोच रखा है। तो मुझे सिर्फ टेबल से कोई नहीं पड़ता, चाहे वो लोहे की हो चाहे सोने की हो, टेबल पे बैठने वाला पड़ता है, टेबल कुर्सी नहीं पड़ते हैं। कपड़े पहनने वाला पड़ता है, कपड़े नहीं पड़ते हैं। ये ध्यान रखें हम इस चीज का। लेकिन आज तो हम पढ़ने वालों को देखते हैं ऐसा लगता है जैसे कि किसी फैशन परेड में शामिल हुए हों। वे इंस्टीट्यूशंस नहीं जा रहे हों, पढ़ने नहीं जा रहे हों, वे किसी फैशन परेड में जा रहे हों शायद, ऐसा लगता है। उन्हें लगता है कि शायद वे इस तरह करके और बहुत अच्छे पढ़ाकू होंगे। ठीक इसी तरह आप बुरा नहीं मानना, ठीक इसी तरह एक लाइन जाती है पीले दुपट्टे सफेद कपड़े पहने हुए मंदिर की तरफ जाती दिखाई पड़ती है। ठीक वैसे ही लगता है कि ये जा रहे हैं धर्मात्मा लोग, लेकिन उनके भीतर जैसे कि ये जा रहे हैं पढ़ाकू लोग और उनके भीतर पढ़ाई जीरो, और ये जा रहे हैं धर्मात्मा लोग उनके भीतर धर्म जीरो। क्या हुआ इन सब चीजों का जरा विचार करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। हम बैठे हैं सब, हमारे अपने युवा बैठे हैं, हमारे अपने उनके पेरेंट्स बैठे हैं और उन सब बैठे हैं, छोटे से लेके बड़े तक बैठे हैं, हम सब बैठे हैं। लेकिन इन चीजों पर हमें अब बहुत बहुत गौर से विचार करना पड़ेगा। हम 24 घंटे कंसंट्रेशन कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं, यदि हमारी भावनाओं में निर्मलता है तो। इतनी सी ही चीज, और कुछ भी नहीं कहना मुझे। एक नाई सेविंग कर रहा है लोगों के बाल बना रहा है, मैंने थोड़ा रुक करके शब्द को बोला है क्योंकि दूसरा शब्द जो एक जनरल चलता है वो मैं नहीं बोलना चाहता। भाषा की अहिंसकता भी
दिनों दिन गायब होती जा रही, जीवन की तो हो ही रही है। भाषा भी अहिंसक होनी चाहिए। कोई वहां पर बाल बनवाए नहीं जाते बल्कि निकलवाए और जाते हैं, और हम कह रहे हैं कि बाल बनवा रहा है, जैसे कि नए और बनवा रहा हूं, पहले से थे ही नहीं। वो भाषा है, सब्जी काटना नहीं बोलते, सब्जी बनाना बोलते हैं। हमारी भाषा की अहिंसकता, हमारे अपने भावनाओं की, 24 घंटे के कामों में अगर हमारे अंदर भावनाओं की निर्मलता है, पढ़ते समय भी भावनाओं की निर्मलता, दूसरे को डिफीट करने का भाव नहीं है, भावनाओं की निर्मलता और क्या है। मुझे अपना अधिक से अधिक जीवन को समृद्ध बनाना है, अच्छा बनाना है, इसलिए मैं बैठा हूं पढ़ने की टेबल पर, मेरे दिमाग में अभी और कोई चीज नहीं है। उन्होंने क्या कहा था, वे क्या कर रहे हैं, वे क्या करेंगे, मुझे इससे क्या लेना देना। दुनिया कहां जा रही है, जा रही होगी, मुझे कहां जाना है, मुझे कैसा बनना है, ये मेरा लक्ष्य है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, इसलिए मंदिर जा रहा हूं। बस दोनों जगह लगाते रहिएगा। और वो क्या विचार कर रहा है, उससे पूछा जाता है कि तुम जब लोगों के बाल निकालते हो, दाढ़ी साफ करते हो, तब तुम्हें क्या लगता है। वो कहता है कि मैं तो इसे भगवान की पूजा मानता हूं, भगवान ने यही तो कहा है कि अपने मन की मलिनता को निकाल के अलग करना। जब मैं लोगों के बालों की मलिनता को अलग करता हूं, उनके दाढ़ी को साफ करता हूं, तब मुझे हमेशा ध्यान बना रहता है कि ऐसे ही मुझे अपने जीवन की गंदगी को उठा करके बाहर फेंकना है, जैसे मैंने इसके सिर पर लगी हुई गंदगी को उठा करके बाहर फेंक दिया, कचरे को बाहर कर दिया है। ठीक इसी तरह विनोबा अपने कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं और लोग उनसे कह रहे हैं कि आपके पास तो और बहुत बड़े बड़े काम है, वो करिएगा, ये छोटा सा काम हमारे जिम्मे छोड़ दीजिएगा। वो कहते ये छोटा काम नहीं है, मैं अपने कमरे में झाड़ू लगाने का काम ये सोच के करता हूं कि भगवान ने यही तो कहा था कि अपने भीतर की गंदगी उठा के फेंकना, मैं अपने कमरे की गंदगी उठा के फेंकते समय यही विचार करता हूं कि कम से कम अपने कमरे में गंदगी फैलाऊं एक चीज, और अगर गंदगी फैल जाए तो मैं दूसरे को उसे हटाने के लिए इंतजार ना करूं, स्वयं उस गंदगी को हटा दूं। इतना ही तो, ये है भावना, ये 24 घंटे हो सकते। पढ़ने की टेबल पर बैठने वाले हम ऐसी भावना कर सकते हैं, रोटी बनाने के लिए बैठी हुई मां ऐसी भावना कर सकती है, दुकान पर बैठा हुआ सेल्समैन ऐसी भावना कर सकता है, ऑफिस में बैठा हुआ और एक ऑफिसर ऐसी भावना कर सकता है कि मैं अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हूं, और मेरा कर्तव्य लोगों के जीवन को अच्छा बनाने का है और साथ साथ मेरे अपने जीवन को अच्छा बनाने का। मेरे जीवन से किसी को दुख पहुंचे, मेरे जीवन से किसी को क्षति हो, ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। क्या ऐसे सोच के साथ हम 24 घंटे नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, वही कंसंट्रेशन है। उस कंसंट्रेशन को सीखने के लिए जरूर इतना करना कि सुबह शाम 5-5 मिनट अपने जीवन के जरूर निकालना। कितने भी पढ़ने वाले हो, कितना भी मंदिर जाने वाले हो, कितना भी कुछ करने वाले हो, 5 मिनट सुबह से जरूर बैठ करके उस कंसंट्रेशन के बाद दिन भर वो कंसंट्रेशन कैसे बना रहेगा, इसके लिए बैटरी चार्ज करने के लिए सुबह 5 मिनट बैठ। कुछ करना वरना कुछ नहीं है, बस शांत होकर के सोचना है कि आज जब तमाम विषमताएं और विकृतियां मुझे घेरेंगी, मैं सावधान हूं, मैं शुरू करता हूं अपनी यात्रा। जैसे कि मैं अपने किट से लैस होकर के घर से बाहर निकलता हूं, बस वैसे ही मैं अपने भीतर, मैं बाहर की विकृतियों से अपनी प्रसन्नता को डैमेज नहीं होने दूंगा, मैं बाहर की विषमताएं और विकृतियों के बावजूद भी अपने मन को अशांत नहीं होने दूंगा, मैं अपने मन की शांति को नहीं खोऊंगा, मैं अपने साहस को नहीं खोऊंगा, मैं अपने प्रेम और स्नेह को नहीं खोऊंगा, जहां की सारे लोग घृणा और द्वेष से भरे हैं इसके बावजूद भी। ये कंसंट्रेशन, और क्या करना कंसंट्रेशन। मैं अपने लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट हूं, मैं अपनी भावनाओं को निरंतर उसी लक्ष्य की तरफ ले जाने वाला बनाए रखता हूं। अगर ये मैंने अपने जीवन में कर लिया तो शायद जो चीजें हम कर रहे हैं वे सब अच्छी भावना से किया गया एक कर्म अनंत फल देता है, बुरी भावना से किया गया वही अच्छा कर्म शून्य फल देता है। यह गणित का हिसाब है। विनोबा की मां को मन में आया कि 1,00,000 चावल चढ़ाएं भगवान के सामने, गिनने बैठ गई वो। विनोबा के पिताजी आए, गणित के बढ़िया प्रोफेसर थे, कह ले क्या कर रही तुम बुद्धू हैं, 1,00,000 चढ़ाना ना। अरे 10 ग्राम चावल तोड़ लो और गिन लो, 10 ग्राम में कितने चढ़ते हैं, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो, हम गुणा करके बता देंगे कि कितने ग्राम में 1 लाख चढ़ेंगे, बस उतने ग्राम टोल करके समझ लो कि हो गए 1 लाख, और अगर कम लगे तो 2-4 और डाल लेना बस। और भगवान थोड़ी गिनने जा रहे हैं कि तुमने 1 लाख चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, हमने ऐसा लॉजिक दिया, लॉजिक तो लॉजिक है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ठीक है, परफेक्शन है इस लॉजिक में तो।